गाथा, रूप वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं सुदामा पांडे धूमिल की एक सुप्रसिद्ध रचना पटकथा। प्रस्तुत है इसका दूसरा अंश। भीड़ बढ़ती रही, चौराहे चौड़े होते रहे, लोग अपने अपने हिस्से का अनाज खाकर निरापद भाव से बच्चे जनते रहे। योजनाएं चलती रहीं, बंदूकों के कारखानों में जूते बनते रहे, और जब कभी मौसम उतार पर होता था, हमारा संशय हमें कोसता था। हम उत्तेजित होकर पूछते थे, यह क्या है, ऐसा क्यों है? फिर बहसें होती थीं। शब्दों के जंगल में हम एक दूसरे को काटते थे, भाषा की खाई को जुबान से कम, जूतों से ज़्यादा पाटते थे। कभी वह हारता, कभी हम जीतते रहे। इसी तरह नोकझोंक चलती रही, दिन बीतते रहे। मगर एक दिन मैं स्तब्ध रह गया। मेरा सारा धीरज युद्ध की आग से पिघलती हुई बर्फ में बह गया। मैंने देखा कि मैदानों में नदियों की जगह मरे हुए सांपों की केचुली बिछी है। पेड़ टूटे हुए रडार की तरह खड़े हैं। दूर दूर तक कोई मौसम नहीं है। लोग घरों के भीतर नंगे हो गए हैं और बाहर मुर्दे पड़े हैं। विधवाएं तमगा लूट रही हैं, सधवाएं मंगल गा रही हैं। वन महोत्सव से लौटी हुई कार्यप्रणालियां अकाल का लंगर चला रही हैं। जगह जगह तख्तियां लटक रही हैं। यह श्मशान है, यहाँ की तस्वीर लेना सख्त मना है। फिर भी उस उजाड़ में कहीं कहीं घास का हरा कोना कितना डरावना है। मैंने अचरज से देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ बारूद का सबसे बड़ा गोदाम है। अखबार के मटमैले हाशिए पर लेटे हुए एक तटस्थ और कोढ़ी देवता का शांतिवाद नाम है। यह मेरा देश है, यह मेरा देश है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ जली हुई मिट्टी का ढेर है, जहाँ पर तीसरी जुबान का मतलब नफरत है, साजिश है, अंधेर है। यह मेरा देश है और यह मेरे देश की जनता है। जनता क्या है? एक शब्द, सिर्फ एक शब्द है। कोहरा, कीचड़ और कांच से बना हुआ एक भेड़ है, जो दूसरों की ठंड के लिए अपनी पीठ पर ऊन की फसल ढो रही है। एक पेड़ है, जो ढलान पर हर आती जाती हवा की जुबान में हाँ हाँ करता है, क्योंकि अपनी हरियाली से डरता है। गांव में गंदे पनालों से लेकर शहर के सिवालों तक फैली हुई कथाकली की अमूर्त मुद्रा है यह जनता। उसकी श्रद्धा अटूट है। उसको समझा दिया गया है कि यहाँ ऐसा जनतंत्र है जिसमें घोड़े और घास में एक जैसी छूट है। कैसी विडंबना है, कैसा झूठ है। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है। जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है। अंधकार में सुरक्षित होने का नाम है तटस्थता। यहाँ कायरता के चेहरे पर सबसे ज्यादा रक्त है। जिसके पास थाली है, हर भूखा आदमी उसके लिए सबसे भद्दी गाली है। हर तरफ कुआं है, हर तरफ खाई है। यहाँ सिर्फ वह आदमी देश के करीब है जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है, जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है। मैं सोचता रहा और घूमता रहा, टूटे हुए पुलों के नीचे, वीरान सड़कों पर, आँखों के अंधे रेगिस्तानों में, फटे हुए पालों की अधूरी जल यात्राओं में, टूटी हुई चीज़ों के ढेर में मैं खोई हुई आज़ादी का अर्थ ढूंढता रहा। अपनी पसलियों के नीचे, अस्पतालों के बिस्तर में, नुमाइशों में, बाजारों में, गांवों में, जंगलों में, पहाड़ों पर, देश के इस छोर से उस छोर तक, उसी लोक चेतना को बार बार टेरता रहा जो मुझे शांति दे और मेरे भीतर बाहर का जहर खुद पी सके। और तभी सुलग उठा पश्चिमी सीमांत, ध्वस्त ध्वस्त ध्वांत ध्वांत। मैं दोबारा चौंक कर खड़ा हो गया। मेरा चेहरा आत्महीनता के स्वीकृत में कंधों पर लुढ़क गया, किसी झनझनाते चाकू की तरह खुलकर कड़ा हो गया। अचानक अपने आप में जिंदा होने की यह घटना या देश की परंपरा की एक बेमिसाल कड़ी थी। लेकिन इसे साहस मत कहो, दरअसल यह पुट्ठों तक चोट खाई हुई गाय की घृणा थी। जिंदा रहने की पुरजोर कोशिश जो उस आदमखोर की हवस से बड़ी थी, मगर उसके तुरंत बाद मुझे झेलनी पड़ी सबसे बड़ी ट्रेजडी अपने इतिहास की, जब दुनिया के स्याह और सफ़ेद चेहरों ने विस्मय से देखा कि ताशकंद में समझौते की सफ़ेद चादर के नीचे एक शांत यात्री की लाश थी। और अब यह किसी पौराणिक कथा के उपसंहार की तरह है कि इस देश में रोशनी उन पहाड़ों से आई थी जहां मेरी पड़ोसी ने मात खाई थी, जहां मेरे पड़ोसी ने मात खाई थी। मगर मैं फिर वहीं चला गया, अपने जुनून के अंधेरे में फूहड़ इरादों के हाथों चला गया। वहां बंजर मैदान कंकालों की नुमाइश कर रहे थे, गोदाम अनाजों से भरे थे और लोग भूखों मर रहे थे। मैंने महसूस किया कि मैं वक्त के एक शर्मनाक दौर से गुजर रहा हूँ। अब ऐसा वक्त आ गया है जब कोई किसी का झुलसा हुआ चेहरा नहीं देखता है, अब ना तो कोई किसी का खाली पेट देखता है, न थरथराती हुई टांगें और न ढला हुआ सूर्यहीन कंधा देखता है। हर आदमी सिर्फ अपना धंधा देखता है, सबने भाईचारा भुला दिया है, आत्मा की सरलता को भुलाकर मतलब के अंधेरे में एक राष्ट्रीय मुहावरे की बगल में सुला दिया है सहानुभूति और प्यार। अब ऐसा छलावा है जिसके जरिए एक आदमी दूसरे को अकेले अंधेरे में ले जाता है और उसकी पीठ में छुरा भोंक देता है, ठीक उसी मोची की तरह जो चौक से गुजरते हुए देहाती को प्यार से बुलाता है और मरम्मत के नाम पर रबर के तल्ले में लोहे की 3 दर्जन फुल्लियाँ ठोंक देता है और उसके नहीं नहीं के बावजूद डपट कर पैसा वसूलता है। गरज यह है कि अपराध अपने यहाँ एक ऐसा सदाबहार फूल है जो आत्मीयता की खाद पर लाल भड़क फूलता है। मैंने देखा कि जनतांत्रिक जंगल में हर तरफ हत्याओं के नीचे से निकलते हैं, हरे हरे हाथ और पेड़ों पर पत्तों की जुबान बनकर लटक जाते हैं। वे ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे सुनकर नागरिकता की गोधूली में घर लौटते मुसाफिर अपना रास्ता भटक जाते हैं। उन्होंने किसी चीज़ को सही जगह नहीं रहने दिया, न संज्ञा न विशेषण न सर्वनाम, एक समूचा और सही वाक्य टूटकर बिखर गया है। उनका व्याकरण इस देश की सिराओं में छिपे हुए कारकों का हत्यारा है। उनकी सख्त पकड़ के नीचे भूख से मरा हुआ आदमी इस मौसम का सबसे दिलचस्प विज्ञापन है और गाय सबसे सटीक नारा है। वे खेतों में भूख और शहरों में अफवाहों के पुलिंदे फेंकते हैं। गाथा में आप सुन रहे थे सुदामा पांडे धूमिल की सुप्रसिद्ध रचना पटकथा का एक अंश। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया डॉक्टर पवन मिश्र ने।